अर्पिता उन दोनों की बात सुनकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, और तभी उसकी नज़र समर्थ पर गई, जो अभिमन्यु से कुछ बात कर रहा था। उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। अर्पिता की नज़रें उस तरफ ही थी। उसे नहीं पता था कि वे दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु और समर्थ के बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वे दोनों किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। इप्सिता ने भी ये नोटिस किया, जिस तरह से अर्पिता उन दोनों की तरफ देख रही थी। इप्सिता ने अर्पिता से पूछा, समर्थ को इस बारे में पता था ना? अर्पिता ने कहा, क्या, किस बारे में? इप्सिता ने अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, यही, आपके डाइवोर्स के बारे में। उसे पता था ना पहले से ही, और अभिमन्यु को भी उसने ही बताया होगा। इप्सिता की ये बात सुनकर अर्पिता ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया, और इप्सिता भी बाकी पूरी बात समझ गई। अर्पिता ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, चलिए भाभी सा, आप क्यों हमारी वजह से परेशान हो रही हैं? चलिए, हम आपको आपके रूम में छोड़ देते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फिर कुछ ही देर बाद रिसेप्शन पार्टी के लिए रेडी भी होना पड़ेगा आपको, और फिर टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने का। इतना बोलकर अर्पिता इप्सिता को लेकर सीधे उसके रूम में पहुंची। इप्सिता को उसके कमरे के दरवाजे तक छोड़कर अर्पिता वहां से मुड़कर वापस जाने लगी, तो इप्सिता ने उससे कहा, आप भी आराम कर लीजिएगा अर्पिता, सुबह से इतने सारे काम देख रही थीं आप, और फिर वो जयराज का आना। वैसे सच कहूं तो हमें आपके हस्बैंड कभी अच्छे नहीं लगे, मेरा मतलब है काफी हार्ड लगे थे हमें। इंगेजमेंट में ही मिले थे हम उनसे, और काफी अनकंफर्टेबल कर दिया था उन्होंने हमें। अर्पिता ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बहुत ही मायूसी से कहा, भाभी, अब वो हमारे हस्बैंड नहीं है, और हमें पता है वो कोई अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन हमें बस मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ रहा था, क्योंकि मासा ने हमारी शादी तय कर दी थी उनके साथ, और हमें लगा भी नहीं था कभी हम इस रिश्ते से निकल पाएंगे। इप्सिता ने उसकी बात सुनकर कहा, अर्पिता, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और मजबूरी में बंधे हुए रिश्ते कभी भी बहुत आगे तक नहीं जा पाते, और आपका पार्टनर इतना गलत इंसान हो तो, और जो भी हुआ आपको अपने भाई साहब और मन से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी, बोल जरूर आपका साथ देते। चलो कोई बात नहीं, अब तो अच्छा हुआ, कम से कम वो आपकी जिंदगी से चले गए, अब आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हैं। इप्सिता उसे समझाते हुए ये सब बोल रही थी, तो अर्पिता ने कहा, अरे हमारी छोड़िए भाभी सा, अभी तो आपकी और भाई की नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। वैसे भी शाम को आपका रिसेप्शन है, जाइए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, हम कुछ देर में आपके कपड़े भिजवाते हैं शाम के लिए। अर्पिता की बात सुनकर इप्सिता बोली, क्या फिर से चेंज करना पड़ेगा? एक तो इतने भारी कपड़े पहने, वैसे ही हमसे संभालते नहीं हैं, और फिर बार बार बदलने पड़ते हैं, हम तो इसमें ही थक गए और ज्यादा थक जाएंगे। इतना बोलते हुए उसने एकदम परेशान होकर वैसा ही मुंह बना लिया, तो अर्पिता ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, भाभी सा, आप ना सच में बहुत क्यूट हैं, लगता है इसीलिए भाई आपके इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं, और आप परेशान मत हो, हम आपकी मदद कर देंगे तैयार होने में। इतना बोलकर इप्सिता को समझा बुझाकर अर्पिता वहां से चली गई। उसके जाने के बाद इप्सिता भी अपने कमरे के अंदर आई, और बिना चेंज किए इस तरह वो आराम से बेड पर लेट गई, और कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शाम का वक्त, इप्सिता अपने रिसेप्शन के लिए लगभग रेडी हो गई थी। उसने बहुत ही प्यारा सुनहरे और लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो कि अर्पिता ने उसके लिए भिजवाया था, और अभिमन्यु ने भी उसी तरह का शेरवानी वाला कुर्ता पहना था, और ब्रोच लगाकर पगड़ी भी पहनी हुई थी, वही पगड़ी जो उसे दिन में राज्याभिषेक के वक्त अर्पिता ने पहनाई थी। काफी सारे लोगों की मदद के साथ इप्सिता और अभिमन्यु दोनों ही टाइम से रेडी हो गए थे, और वे दोनों एक साथ ही महल के लॉन एरिया में आए, जहां पर उनके रिसेप्शन की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। इसके अलावा मीडिया तो पहले ही वहां पर था। वे दोनों एक साथ सीढ़ियां करकर वहां पर महल के लॉन एरिया में आए, तो सब लोगों की नजरें उन दोनों पर ही जम गई, और इप्सिता बहुत ही नर्वस फील कर रही थी इतने सारे लोगों की नजरें खुद पर महसूस करके। उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी, भले ही वो एक मॉडल थी, लेकिन अभी तक उसने कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट अटेंड नहीं किया था। वो बस कैमरा फेस करती थी, और अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ मीटिंग और फंक्शन ही उसने अटेंड किए थे, और ये कोई इवेंट नहीं बल्कि उसका अपना रिसेप्शन था, क्योंकि शादी तो भले ही उन दोनों ने दो बार की, लेकिन दोनों बार ही आपस में प्राइवेटली की, इसीलिए सब उन दोनों को साथ में देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे, और वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वे दोनों वहां पर अंदर आ पाते उससे पहले ही अर्पिता वहां पर आई, और उसके साथ एक नौकरानी भी थी जो साइड में खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक काफी बड़ा सा थाल पड़ा हुआ था, जो कि पूजा आरती का थाल लग रहा था, और अर्पिता ने उन दोनों के सामने आते हुए कहा, एक मिनट, पहले हम आप दोनों की आरती उतारेंगे, और नजर भी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं किसकी कैसी नजर हो, वो हमारे भाई और भाभी को कहीं नजर न लगा दे। इतना बोलते हुए अर्पिता ने उस थाल में रखा हुआ नारियल उठाया, और उन दोनों के चारों तरफ घूमते हुए नजर उतारने लगी, और फिर उस नारियल को वापस से साइड में रख दिया, और फिर थाल में रखे हुए पैसों की गड्डी उठाकर भी उसने उन दोनों के चारों तरफ घुमाई और नौकर को बटवाने के लिए दे दी। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, अरे अर्पिता, आप क्यों कर रही हैं ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब नजर वजर सब कहने और मानने की बातें हैं। उसकी इस बात पर अर्पिता कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही इप्सिता ने कहा, अरे करने दीजिए ना, वो इतने मन से कर रही है और वैसे भी हमारी मम्मी कहती थी बुरी नजर होती है। इप्सिता ने इतना कहा तो फिर अभिमन्यु भी कुछ नहीं बोला। अर्पिता ने एक साथ उन दोनों की आरती उतारी और फिर वे दोनों वहां एकदम बीच में बने हुए बड़े से स्टेज पर रखे हुए सोफा पर आकर बैठ गए। वहां पर एक काफी बड़ा सा सिंगल सोफा रखा हुआ था और वे दोनों उस पर ही एकदम बीच में आकर बैठ गए। वो सोफा भी काफी सजा हुआ लग रहा था और उस पर बैठे हुए इप्सिता अभिमन्यु के तो ठाठ ही आज एकदम अलग अलग लग रहे थे। वे दोनों सच में वहां के राजा और रानी लग रहे थे। अभिमन्यु अपनी और इप्सिता की शादी की दावत नहीं दे पाया था, इसीलिए रिसेप्शन में उसने पूरे शहर को बुलाकर दावत दी थी और सबको खाने पीने का अच्छा इंतजाम भी करवाया था। सारे लोग वहां पर आए थे और उन दोनों को दुआएं दे रहे थे। कुछ देर के बाद नंदिनी उदय भी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर आ गए। नंदिनी की माँ भी इस बार उनके साथ थी और उदय के मम्मी पापा भी वहां पर आए हुए थे, लेकिन उन लोगों की इप्सिता से मिलने और उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह राजाभिषेक के वक्त वे लोग अभिमन्यु से जरूर मिले थे। अभिमन्यु ने उन लोगों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था और काफी अच्छे से बात की थी, लेकिन वे लोग अपने किए पर काफी शर्मिंदा थे और उन्हें पता था कि उनकी बेटी अभी भी उनसे नाराज है, इसीलिए वे बस दूर से ही उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए थे। सामने जाकर वो उसकी खुशियों में किसी भी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए साइड में ही खड़े हुए थे।
वहीं इप्सिता को तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो बाकी सब लोगों को देख पाए। एक न एक कोई ना कोई वहां पर उसे लोगों को घेरे हुए था और उन दोनों को जैसे सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला था। कभी मीडिया इंटरव्यू, कभी फोटोशूट, तो कभी लोगों के साथ फोटोज क्लिक करवाना और कभी काफी सारे मेहमान और वीआईपी लोगों से मिलना, क्योंकि वहां पर शहर के सारे बड़े और नामी लोग आए हुए थे अभिमन्यु को बधाई देने के लिए। वे सारे लोग इस वक्त आए थे जिन्हें सुबह राज्याभिषेक में नहीं बुलाया गया था, रिसेप्शन में उन सभी को इन्वाइट किया गया था। अभिमन्यु बहुत ही प्राउडली इप्सिता का इंट्रोडक्शन उन सब लोगों से करवा रहा था और उनमें से कुछ लोगों को ये भी पता था कि इप्सिता एक मॉडल है, क्योंकि अब तक वो अच्छी खासी फेमस हो चुकी थी। अभिमन्यु ने उन लोगों से एकदम साफ लफ्जों में कह दिया कि उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बाकी लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उसकी बीवी क्या काम करती है, क्योंकि जब वो महल की रानी होने के साथ अपना काम भी कंटिन्यू कर पा रही है और दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करेगी तो बाकी लोगों को भला क्या परेशानी है। अभिमन्यु एकदम मजबूती से इप्सिता के साथ खड़ा था और उन्हें उसने पूरी तरह इप्सिता का साथ दिया, तो बाकी किसी की भी खिलाफ जाने की या कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर के बाद नंदिनी और उदय भी वहां पर आए और उन दोनों को बधाई दी। उदय अभिमन्यु के गले लगा और नंदिनी इप्सिता के। इप्सिता भी उन दोनों को वहां पर देखकर बहुत खुश हुई और तभी नंदिनी की माँ भी आगे आई। उनके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। उन्होंने वो गिफ्ट बॉक्स इप्सिता को देते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का एक छोटा सा तोहफा। शादी तो इतनी जल्दबाजी में हुई थी, तब कुछ दे नहीं पाई, इसलिए अब दे रही हूँ। नंदिनी की माँ ने बहुत ही प्यार से कहा तो इप्सिता उन्हें मना नहीं कर पाई और उसने उनके हाथ से वो छोटा सा गिफ्ट बॉक्स ले लिया। टू बी कंटिन्यूड।